नमो सिद्धाणम्, नमो आयुर्याणम्, नमो उवध्यायाणम्, नमो नो सर्वसाहूणम्, ईशो पंच नमो यारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेषिं अधमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहंत मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम्। केवल पण्डितो धम्मो मंगलम्, चत्तारि लुगुत्तमा अरहंत लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा। केवल पण्डितो धम्मो लुगुत्तमा, चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि। केवलिपण्डितो धम्मो शरणं पवज्जामि, परम पूज्य देवाधिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, जिनवाणी माता की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की, पंच गुरु भक्ति का उत्सव। मणिणा इंद्र सुर धरिय चतया पंच Bye. इच्छा निधनते पंच महागुरुवत्ति कौशद्दो गौ तस्लोचे अठ महापाड़िहेर संयुक्ताणम अरहंताणम अठ गुण संपन्नाणम उद्दलोये मत्स्यम में पैठ्याणम सिद्धाणम अठ पवयण माओ संयुक्ताणम आयरियाणम आयरियाणम आयाराज सुदनाणो विदेशयाणम उवध्यायाणम तिरयण गुण पालन रयाणम शब्द साहूणम निच काल मच्छेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुख कौ कम कौ बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जीर्ण संपत्ति हो मझम वंदितु सर्व सिद्धि ध्रुव मचल मणोव मंगईं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुय केवली भणियं कितने समय तक यह जीव अज्ञानी रहता है और उसकी पहचान क्या होती है। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे कम्मे नो कम मम्मीय अहमिदि महकम च अहमिदि अहकं च कम्मणो कम्मम जा एषा खलु बुद्धि अप्पडि बुद्धो भवति ताव। कर्म के प्रति और नो कर्म के प्रति, अर्थात शरीर में और ज्ञानावरण आदि में यही मैं हूं, ऐसी धारणा जब तक रहती है और कर्म और नोकर्म मेरे हैं, मैं की मान्यता और मेरे की मान्यता, ये जब तक कर्म और नोकर्म के प्रति होती है बस तब तक यह जीव अज्ञानी रहता है, सुषुप्त रहता है, जागृत नहीं माना जाता, ज्ञानी नहीं माना जाता। तो कर्म नोकर्म के प्रति मैं और मेरा, इसकी मान्यता अज्ञानी की पहचान है। अब उसके चिन्ह बता रहे हैं, अहमेदम एदम अहम अहमेदस्येव होमि मम एदम अन्नं जम परदव्यम सच्चित्ता चित्तमिश्रं वा आसि मम पूर्वमेदम एदस अहम पि आसपूर्वंही ओहिति पुनो विमज्जन एयस अहम पि होष्यामि एयन्त असंभूतम् आदवियप्पम करेदि सम्मूढो भूदत्थं जानन्तो न करेदि तु तन्त असम्मूढो। मोहित प्राणी मिथ्या दृष्टि जीव, यह मैं हूं अथवा मैं यह हूं, मैं इसका हूं, ये मेरा है। पर द्रव्य के प्रति, किसी भी पर द्रव्य के प्रति, वह द्रव्य सचित्त हो अर्थात जीवित हो, अचित्त हो अर्थात निर्जीव हो, और मिश्र हो अर्थात वस्त्र आभूषण आदि को धारण किया हुआ कोई जीव हो, ये वस्त्र आभूषण हो गए अजीव, और वो जीव जो है वो जीव। तो इस तरह सचित्त अचित्त और मिश्र किसी भी पर द्रव्य के प्रति, ये मैं हूं, मैं ये हूं, ये मेरा है, मैं इसका हूं, मैं ये था, ये मैं था, ये मेरा था, मैं इसका था, मैं ये होऊंगा, ये मैं होऊंगा, ये मेरा होगा, मैं इसका होऊंगा। इस प्रकार तीनों काल संबंधी मैं और मेरा विषयक जो धारणा होती है वो जिसमें होगी, समझ लेना कि वो मिथ्या दृष्टि जीव है। ये तो खुद अपने अंदर झांकने की बात है, मैं ये हूं, ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं इसका हूं, ये वर्तमान काल की होगी। फिर भूतकाल संबंधी भी होती है, मैं ये था और ये मैं था, ये मेरा था, मैं इसका था, ये था भूतकाल का हो गया। और भविष्यत काल में भी ले लो, ये मैं बनूंगा, मैं ये बनूंगा, ये मेरा होगा, मैं इसका होऊंगा। इस तरह जो किसी भी पर पदार्थ के प्रति, सचित्त हो अचित्त हो मिश्र हो, उसके प्रति धारणा बनती है तो वह मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है, ऐसी धारणा वाला। और भूतत्वं जानन्तु, लेकिन सद्भूत व्यवहार नय को और शुद्ध निश्चय को जानने वाला न करेगी, ऐसी धारणाएं नहीं करता, ऐसे विकल्प नहीं करता। अन्नान मोहित मती मध्यमिणम भण विपुगलन दव्यम बद्धम अबद्धं चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो सवन्नु नाण विद्धु जीवो उब ओग लक्षणो निच्चम कसु पुगल दव्वी भूदो जम्भण सिमाज्यमिणम यदि सु पुगल दव्वी भूदो जीवत्तमागतं इदरं तो सत्तो वत्तंजे मध्यमिणम पुगलं दव्वम। अज्ञान से मोहित है मति जिसकी, अर्थात मिथ्यात्व के कारण जिसकी मान्यता भ्रमित है, ऐसा जीव कहता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। अब वो बद्ध पुद्गल द्रव्य यानी शरीर और कर्म, और अबद्ध यानी जो दूसरे पदार्थ हैं, तो उनके विषय में कहता है कि ये मेरा है, और अनेक प्रकार के भाव करता है, राग द्वेष मोह संबंधी। लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान द्वारा जीव को उपयोग लक्षण देखा है, अर्थात जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में तो जीव रूपी नहीं है, चेतनामय है। ज्ञान दर्शन से नित्य युक्त है, तो जीव पुद्गल कैसे बन सकता है? और जब जीव पुद्गल नहीं हो सकता तो फिर जीव ये कैसे कह सकता है कि पुद्गल मेरा है? और अगर ऐसा माने कि जीव उद्गल द्रव्य रूप हो गया और उद्गल जीव रूप हो गया, तो फिर ये कहा जा सकता है, तो फिर ये कहना ठीक है कि ठीक है ये सब चीजें मेरी हैं। लेकिन जब जो दो द्रव्य हैं जीव और अजीव, ये कभी एक दूसरे रूप नहीं परिणमन करते, तो फिर जीव ये कैसे कह सकता है कि जो पर द्रव्य है वो मेरा है। अब इसमें एक बड़ी सुंदर कलश कार्य का आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समझदार कलश में दी है। जो अपना निकटतम मित्र होता है उसको बड़े वात्सल्य के साथ जो संबोधन देकर के अपन कभी बात करते हैं उससे, वो संबोधन आचार्य अमृतचंद स्वामी ने यहाँ पर दिया हुआ है। यानी अब इस काव्य में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी अपने निकटतम मित्र बन करके अपने से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आये कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगथ विल संतन स्वम समालोक्येन तेजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। सैकड़ों बार उपदेश सुनने के बाद भी और सब कुछ सुन ले सुनकर समझ कर भी, अंत में जब अपनी धारणा को जांच करके देखते हैं, फिर यही लगता है कि यही तो हूं मैं, ऐसे ही लगता है। वो शरीर और जीव का जो एकत्व मोह है, वो सैकड़ों उपदेशों से भी कभी कभी टूट नहीं पाता। सब सुना समझा, सिर्फ बुद्धि से वो सब कैलकुलेट कर लिया कि ऐसा है वैसा है, ठीक है आ गया समझ में, लेकिन फिर जब अपनी चर्या में चला जाता है, अपनी चेष्टा में रमता है, तो वापस अपने मैं आ जाता है, शरीर के साथ मिला हुआ मैं, वो उस असली मैं को छोड़ देता है, वो जिसको उपदेशों में और जिनवाणी में स्वाध्याय में समझा सुना था, और फिर वापस जब अपने में चला जाता है, अपनी धुन में जाता है, तो फिर से शरीर और मैं एक वही मैं हो गया। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि देखो इससे तुम्हें हम बाहर निकालने का एक उपाय बतलाते हैं, बाहर निकालने का हम एक प्रयास करते हैं। हे प्रिय मित्र, तुम थोड़ी देर के लिए मर जाओ। बहुत ही आश्चर्यकारी विधि बता रहे हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान की। अई कथम अपि मृत्वा, बोले कि तुम बस किसी प्रकार से थोड़ी देर के लिए मर जाओगे। अब पूछने वाला पूछेगा कि कितनी देर के लिए, तो आचार्य कहते हैं मुहूर्तम, एक मुहूर्त के लिए। ये एक समझाने का तरीका है। अब ऐसा कौन है जो एक मुहूर्त के लिए मर जाए फिर वापस जिंदा हो जाए, नहीं, ये समझने की बात है। लेकिन ये बात अगर बुद्धि में आ गई तो फिर एक क्षण में चमत्कार हो जाए। क्या कह रहे हैं, हे मित्र, हे प्रिय मित्र, किसी तरह से तुम थोड़ी देर के लिए मर जाओ, तब तो कौतूहली सन, लेकिन अंदर ये उत्कंठा बनाए रखना कि वो जो जीव तत्व जीव तत्व जीव तत्व बार बार कहते हैं और शास्त्रों में बार बार जिसकी चर्चा निकलती है, उसको मैं देखूं तुझे कि क्या वस्तु है। सिर्फ कौतुकवश, कौतुकवश मतलब क्या होता है, जैसे रास्ते में कुछ हो गया और फिर जिनका कोई लेना देना नहीं है उस घटना से, वो भी तमाशा देखने के लिए कौतुकवश खड़े हो जाते हैं। तो आचार्य महाराज ये नहीं कह रहे तुम कि तुम अपनी इच्छा से या फिर मेरे कहने से कुछ करो, लेकिन तुम सिर्फ ये देखने के लिए कि है क्या आखिर वो जीव तत्व, देखे तो सही थोड़ा। तुम विश्वास मत करो कि जीव तत्व कोई वस्तु है, लेकिन तुम सिर्फ कौतुकवश थोड़ी देर के लिए मर जाओ। और देखो मर जाओ ये बोलने के पहले क्या कहा, हे प्रिय मित्र। कोई बोल सकता है अपने मित्र को मर जाओ? तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई रहस्य अवश्य है। बोलेगी हे प्रिय मित्र, किसी तरह से तुम थोड़ी देर के लिए मर कर कौतुकवश उस जीव तत्व के बारे में कुतूहल अपने अंदर जगाकर मरने के बाद देखो क्या लगता है तुम्हें, कैसा लग रहा है। तो मरकर कहीं चले मत जाना विग्रह गति। आचार्य कहते हैं कि मरकर किसी दूसरी गति में हम तुम्हें नहीं भेज रहे हैं, तुम मरकर मूर्ते हैं मुहूर्तम पार्श्ववर्ती भव। एक मुहूर्त के लिए तुम अपनी मूर्ति अर्थात इस शरीर की आकृति के पड़ोसी बन करके देखो, यानी इस शरीर के निकट तुम विराजमान हो जाओ थोड़ी देर के लिए, एक मुहूर्त के लिए। किसी तरह से तुम किसी उपाय से मर जाओ और मर करके जीव तत्व के बारे में कौतुकवश सिर्फ ये देखने के लिए ये आखिर है क्या ये जीव तत्व, तुम शरीर के पड़ोसी बन जाओ। इससे क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं कि तुम पड़ोसी बन तो जाओ जिससे तुम अपने आप को इससे अलग देख लोगे। पड़ोसी बनने पर क्या होता है कि दो अलग अलग दिखाई देते हैं कि नहीं, वो और अपन दोनों अलग अलग दिखते हैं। तो तुम जब पृथक अपने आप को सुशोभित देखोगे तो उसको देखकर तत्काल शरीर और मैं एक हूं ये भ्रम समाप्त हो जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में? एक क्षण के लिए करके देखो आंख बंद करके, एक मुहूर्त के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके देखो, शरीर के पड़ोसी बनकर देखो। मन के लिए कुछ असंभव नहीं है। अब बताओ आत्मा और शरीर एक है? पड़ोसी बनकर देखने के बाद समझ में आ जाता है कि एक नहीं है। वैसे तो जब किसी का मरण होता है तो फिर सभी लोग जान लेते हैं कि नहीं वो तो अब गए, वो नहीं रहे, वो नहीं रहे, तो कौन रह गया? जो रह गया और जो नहीं रहा वो एक कैसे हो सकता है? स्पष्ट समझ में आ रहा है? जो रह गया और जो नहीं रहा वो एक हो सकता है? कभी कदापि नहीं। बस ये चीज अपन दूसरों के उसमें तो बातचीत में बोल लेते हैं, उनको समझा भी लेते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जो आते हैं वो जाते हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आध्यात्मिक वैराग्य भरी। लेकिन यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि उन बातों से तुम्हारा मोह नहीं टूट रहा है, तुम समझाते हो समझते नहीं हो। इसलिए समझने के लिए एक काम करो, तुम किसी उपाय से थोड़ी देर के लिए मर जाओ और मरकर शरीर के पड़ोस में खड़े होकर देखो एक मुहूर्त के लिए, शरीर के पड़ोसी बनकर देखो जिससे तुम अपने आप को पृथक सुशोभित पाओगे। और अपने आप को पृथक सुशोभित देख करके ये मैं हूं मैं ये हूं ये भ्रम उसी क्षण टूट जाएगा। कितने कितने उपाय किए आचार्यों ने जीवों के कल्याण के। अब देखिए इस काव्य को पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि आचार्य महाराज कितनी हार्दिक भावना से संसारी जीवों का मोह तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो किसको किसकी परवाह है, तुम्हें सुनना हो सुनो, तुम्हारा कल्याण करना हो करो, हम काहे को अपने सिर पर बोझ ले तुम्हारा। नहीं, आचार्य श्री के हृदय में इतना अपार वात्सल्य, इतना प्रेम है कि किसी जीव को दुख ना हो, सब सही चीज को समझ जाए, सत्य से दूर होने के कारण संसार में भटक रहे हैं, सत्य को पहचान ले, उसके निकट आ जाए और आत्मा का उद्धार करें तो कल्याण हो। अभी खुद को नहीं जाना और दुनिया की बातें करता है, समझे बिन सबको समझाता है। इसीलिए संसार में भ्रमण हो रहा है। अब वो अज्ञानी जीव फिर प्रश्न कर रहा है कि आप कह रहे हो कि जीव शरीर नहीं है, पर हमने भी बहुत से शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सारे पूजा पाठ स्तोत्र ग्रंथ हमने भी पढ़े हैं, तो हमारे मन में एक शंका उठ रही है। वो शंका ये है कि आप कहते हो कि जीव शरीर नहीं है, तो फिर बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही है इस बात को स्वीकार करने पर। गुरु पूछ रहे क्या समस्या आ रही है कि शरीर जीव नहीं है, इस बात को स्वीकार करने पर तुम्हें क्या समस्या आ रही है? तो वो कहता है यदि जीवो न शरीरम तिथराय संतुदी जीव सब्वाभिभवति मिच्छा तेन आदाहवति देहो। यदि जीव शरीर नहीं है तो आचार्य परमेष्ठ की स्तुतियां निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी यथाजात बालक जैसे रूप को धारण करने वाले उन 36 गुणों वाले आचार्य परमेष्ठियों की मैं स्तुति करता हूं, उनकी वंदना करता हूं, ये स्तुति तो मिथ्या हो गई, क्योंकि निर्ग्रंथ मुद्रा आत्मा की तो हो नहीं सकती। बालक जैसा रूप तो शरीर का होगा, तो फिर ये स्तुति कैसे घटित हो सकती है अगर शरीर आत्मा नहीं है? और तीर्थंकरों की स्थिति क्या है? तीर्थंकरों की स्थिति कांत्यैव स्नपयन्ति ये दश दिशो, जो अपने शरीर की कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं, धामना निरंधन्ति ये, और अपने तेज से जो रोक लेते हैं, किसको रोक लेते हैं? धामो दाम महस्विनांजन मनु मुष्णन्ति रूपेण ये, जो उत्कृष्ट तेजस्वी सूर्य आदि प्रकाशमान पदार्थ हैं उनके तेज को भी अपने तेज से जो रोक लेते हैं और अपनी सुंदरता से जनता के मन को जो हर लेते हैं, दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयो साक्षात् क्षरन्तो मृतम्, और दिव्य ध्वनि के द्वारा जो साक्षात सुख स्वरूप अमृत छराते हैं श्रोताओं के कान कर्ण पुटों में। ये एल्विस हेड और फिर दूसरे जो ईयर ड्रॉप्स हैं वो डालो तो कभी कभी कान में बड़ी राहत लगती है, लेकिन जिनेंद्र भगवान कान में अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा साक्षात सुखकारी अमृत बरसाते हैं। वंद्यास्तेष्ट सहस्र लक्षण धरास तीर्थेश्वराः सूरयः, ऐसे वे 1008 लक्षणों के धारण करने वाले तीर्थेश्वर हमारे लिए वंदनीय है, हम उनकी वंदना करते हैं। अब ये सारी स्तुति मिथ्या होगी अगर शरीर आत्मा न हो तो, क्योंकि देखिए 10 दिशाओं को जिस कांति से तीर्थंकर प्रकाशित कर रहे हैं वो कांति आत्मा की है? नहीं, फिर जो अपने तेज से सूर्य के तेज को भी रोक रहे हैं, अर्थात तिरोहित कर रहे हैं, फीका कर रहे हैं, वो तेज आत्मा का है। और जो अपनी सुंदरता से जनता के मन को हर रहे हैं, वो सुंदरता आत्मा की है। और जो अपनी वाणी द्वारा, दिव्य ध्वनि द्वारा श्रोताओं के कर्णपुटों में अमृत बरसा रहे हैं, वो ध्वनि क्या आत्मा की है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो 1008 लक्षण भी होते हैं शरीर संबंधी, 900 व्यंजन और 108 लक्षण कहलाते हैं, ये सब भी शरीर आश्रित है। और यदि शरीर जीव नहीं है तो फिर ऐसी स्तुति असत्य है। इसलिए इति ममैकांति की प्रतिपत्ति है कि यैव आत्मा तदेव शरीरम कुद्गल द्रव्यम। शंकाकार कह रहा है इसलिए मेरा ये दृढ़ निर्णय है इन स्तुतियों के आधार पर, इन प्रमाणों को देकर के मैं अपनी बात को पुष्ट करते हुए कह सकता हूं कि शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग होते तो फिर ऐसी स्तुतियां संभव ही नहीं थी, इस स्तुतियां असत्य होती। नैवम नय विभागान विघ्नोसि। आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम दृष्टिकोण को नहीं समझ रहे हो इसलिए गलत निर्णय कर रहे हो। क्या कहा, क्या नहीं समझ रहे हो? दृष्टिकोण को। वो जो स्तुति की गई है तीर्थंकरों की, वो एक दृष्टिकोण से की गई है, और तुम उस दृष्टिकोण को न समझकर, उसी को निश्चय मानकर आत्मा और शरीर को एक सिद्ध करने में लग गए हो। नहीं, वो एक दृष्टि है जिस अपेक्षा से जब तक जीव शरीर में है, और शरीर और जीव का जब संयोग संबंध है, तो फिर शरीर का भी उल्लेख करते हुए उस आत्मा की, परमात्मा की स्तुति की जाती है। आचार्य परमेष्ठि की भी उस प्रकार की स्तुति होती है, और तीर्थंकरों की भी स्तुति होती है, भगवान अमुक वर्ण के थे, इतने ऊंचे थे। ये सारी चर्चाएं जो है वो शरीर आश्रित है। व्यवहारणो भासदि जीवो देहो यहवदि खलु इक्को नदुनिच्छयस्य जीवो देहो यत्कदाविएयत्थो। व्यवहार ने इस बात को कहता है कि जो जीव सो शरीर, जो शरीर सो जीव, क्योंकि वो भेद को अभेद करता है ना। पहले चर्चा निकली थी, भिन्न वस्तुओं को एक कर देता है। टांगा, ऑटो, रिक्शा, ये सब क्या है? दो को एक करने वाला व्यवहार है ना। इसी प्रकार ही शरीर और जीव को भी एक करने वाला व्यवहार वही काम करता है, अर्थात वही व्यवहार ने जो वहां पर लौकिक क्षेत्र में दो को एक कर डालता था, वो यहां पर भी जीव और शरीर को एक बना करके स्तुति करता है। इसलिए व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वो स्तुतियां ठीक है, लेकिन तुम अगर उसको निश्चय मान लो, उन वचनों के आधार पर अगर तुम ऑटो और ऑटो ड्राइवर को एक मान लो, तो फिर ये भूल हो जाएगी, दृष्टिकोण न समझने वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन वहां भूल नहीं होती, लौकिक क्षेत्र में, वहां पर ऑटो और ऑटो ड्राइवर को अपनी मान्यता में तो अलग ही मानता है, बोलचाल में एक शब्द से बोलता है। और यहाँ पर जब ये स्तुतियां होती है, तो फिर इन स्तुतियों के आधार पर वो ये कहने लगता है कि नहीं नहीं शरीर और आत्मा एक है। नहीं, ऐसा मत करो, वहां जिस प्रकार से तुम विवेचन कर लेते हो उसी प्रकार यहां भी करो। निश्चय से ऑटो और ऑटो ड्राइवर एक नहीं है, वहां तुम्हारी समझ में क्लियर आता है, इसी प्रकार यहां समझ लो कि निश्चय से आत्मा और शरीर एक नहीं है। न जो निश्चय से जीवो देहो ये कदापि एकत्व। निश्चय ने का अभिप्राय तो ये है कि जीव और शरीर कभी एक नहीं हो सकते, न हुए न है न होंगे, निश्चय का ही अभिप्राय। तो इस तरह अभी ये 27 गाथाएं अपन ने आज की है। इसमें मुख्य बात तो ये समझने की थी कि तीनों काल संबंधी सचित अचित और मिश्र किसी भी अन्य द्रव्य के प्रति यदि ऐसी धारणा होती अपनी कि ये मैं हूं, मैं ये हूं, ये मेरा है, मैं इसका हूं, ये मैं था, मैं ये था, ये मेरा था, मैं इसका था, ये मैं होऊंगा, मैं ये होऊंगा, ये मेरा होगा, मैं इसका होगा होऊंगा, ये जो धारणा है किसी भी सचित अचित मिश्र पदार्थ के प्रति, ये अज्ञानी की पहचान है। इससे ये बात पहचान में आ जाती है कि यह जीव मिथ्या दृष्टि है जिसके अंदर ऐसी धारणा है। तो फिर उसने शंकाकार ने क्या शंका की, फिर तीर्थंकरों की और आचार्यों की जो स्तुति की जाती है वो स्तुति सारी झूठी होंगी। और फिर उसने एक नमूना भी दे दिया, एक स्तुति का एक काव्य भी दे दिया, कांते स्नपयंती, कहता है कि मैंने भी पढ़े ये सब बातें, मैंने तो ये पढ़ा है और आप क्या बता रहे हो, आप पड़ोसी बनकर के बोल रहे हो कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, नहीं शरीर और आत्मा एक है। तब आचार्य महाराज कहते हैं कि व्यवहार नहीं कहता है कि शरीर और आत्मा एक है, वही व्यवहार में है जो टांगा को और टांगे वाले को एक कहता है, जो ऑटो को और ऑटो ड्राइवर को एक कहता है, जो रिक्शा को और ड्राइवर को एक कहता है, चालक को, पर वास्तव में मानता नहीं है एक, ये तो कथन शैली है। और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कथन शैली में अलग प्रकार से कहना ही पड़ता है, मान्यता में भले न हो लेकिन कथन शैली में तो उस प्रकार से कहे बिना व्यवहार नहीं चल सकता। जैसे उदाहरण के लिए आत्मा अरूपी है, अमूर्त है, शरीर से भिन्न है, बच्चे का एडमिशन कराने जाओगे और हेडमास्टर बोलेगा कि क्या नाम लिखवा है, लेकिन नाम आम नहीं है आत्मा का, तो फिर वो बोलेगा कि तुम गलत स्थान पर आए हो, तुम्हें यहाँ से एक ऑटो पकड़कर वहां जाना चाहिए। कहाँ? तो मेंटल हॉस्पिटल। यानी अव्यावहारिक बात करने से संसार नहीं चलता, इसलिए ऐसे शब्द प्रयोग में लाने पड़ते हैं। लेकिन तत्व दृष्टि से विचार करो तो फिर उन शब्दों में यथार्थता होती है क्या? नहीं, किसी का नाम यथार्थ नहीं होता। नाम तो सिर्फ काम चलवाने के लिए माता पिता प्रदान करते हैं जिससे कि जीवन में ये व्यवहार चलता रहे इसके साथ, पर अंतरंग देखेंगे, अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो फिर क्या नाम है, किसका नाम है? कई लोग नाम भूल भी जाते हैं और नाम बताने वाले बहुत कैजुअली बताते हैं। कोई पूछे कि क्या नाम है तुम्हारा, तो कोई इतनी सावधानी से नहीं बताता कि मेरा नाम, ऐसे एक एक अक्षर स्पष्ट बोलते हुए नहीं बताता, क्योंकि उसको इतनी आदत पड़ी हुई है उस शब्द की कि वो एकदम फास्ट बोल जाता है और सामने वाला सुन नहीं पाता कभी कभी, और जो चीज जिसने सुनी नहीं है उसको याद कहाँ तक रखेगा, भूल जाता है। कुछ नाम याद रहते हैं, कुछ नाम भूल जाते हैं, सरनेम भी भूल जाते हैं। तो ये तो एक काम चलाने की पद्धति है, लेकिन यथार्थ में देखा जाए फिर जीव और शरीर कभी भी एक नहीं हो सकते, हमेशा अलग रहते हैं। कर्म संयोग से सिर्फ साथ है, पर साथ होने का अर्थ ये नहीं हुआ कि दो एक हो गए, दो दो ही रहते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक चढ़ो सरावे तुम दो,
Lord, 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 L